Hare Krishna.
Hare.
Nama. Krishna Vitaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Amaham Vishnu Padaya Krishna Vitaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vash Adi Gaura Bhaktave Chaitanya Shri Advaita Gadada Shri Vashadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Krishna, Krishna, Hare, Hare, जय राधा माधव तुज बिहारी जय राधा माधव तुज बिहारी जय राधा माधव तुज बिहारी जय माधव तुज बिहारी जय गोपी जन बाबा गिरिवर धारी जय जय गोपी जन बाबा गिरिवर धारी जय यशोदनंदन भज जन अंजन जय यशोदनंदन भज जन अंजन नंदन भज जन यमुना श्रीरावण यमुना श्रीरावण परमहंस प्रवकाचार्य अष्टोत्तर सती ज्वाइन ग्रेट चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन डीवीडी बीआई पौंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रकाचार्य अष्टोत्तर सती ज्वाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गिरी गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर नीताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू दसबल वैष्णवाज ऑल ग्लोरीज टू दसबल वैष्णवाज ऑल ग्लोरीज टू दसबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की गौर हरि प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीव्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टत्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टकी भक्तिरा भवती नैष्टकी भक्तिरा भवती नैष्टकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद दस अध्याय दस श्लोक श्रृंखला 27 बालेना निष्कर्षयता अन्वक उल्लोकम तद् दाम उदारेना तरस उत्कलिता अंग्री बंदो निष्पेतो परम विक्रमिता अतिवेप स्कंदा प्रबला वितापो क कृता छंद शब्दों बाले बाले न निष्कर्षयता अन्वाग उल्लुकं तद् बालेन बालेन निष्कर्षयता अन्वाग उल्लुकं तद् उल्लुकं तद् दामोदरेण दामोदरेण तारस उत्कलित अंग्री बंदो दामोदरेण उत्कलम दामोदरेण तारस उत्कलित अंग्री बंदो निष्पेत तु परम विक्रमित अतिवेपा निष्पेत तु परम विक्रमी अतिवेपा स्कंद प्रबल विदपोकृत छंद शब्द स्कंद प्रबल विदपोकृत छंद शब्द बाले न निष्कर्षयता अन्वाग उल्लुकं तद् दामोदरेण तरस उत्कलित अंग्री बंदो निष्पेतो परम विक्रमिता अत आवेपा वेपा स्कंद प्रबल वितपो कृत छंद शब्दो बालेन निष्कर्षयता अन्वागुल्लुकं तद् दामोदरेण तारस उत्कलित अंग्रिबन्धो निष्पेत तो परम विक्रमिता तिवेपा स्कंद प्रबल वितपो कृत छंद शब्द बालेन निष्कर्षिताय दामोदरेण विठपो कृत छंद शब्दो निष्कर्ष्यतम्। स्कंद प्रवाल विठपो कृत संद शब्दो बालीन निष्कर्षयत दामोदरेण बालक कृष्ण द्वारा निष्कर्षयता घसीटते हुए अन्नवाग पीछा करती उल्कम उकली वह दाम उदरेना पेट से बंदे कृष्ण द्वारा तरसा बलपूर्वक उत्कलिता उकड़ आई अंग्री बंदो दोनों वृक्ष की जड़े निष्पेततु गिर पड़े परम विक्रमिता परम शक्ति द्वारा अति वेप बुरी तरह हिलते धुलते हुए கண்ட தன பிரபலா பிரபால பத்தியம் கே குச்சே பத்தியம் கே குச்சே பெட்டப்போ தோனோ விரக்ஷ கிரீதா கர்த்தே ஹுவே சந்த சப்தோ பயானக் சப்த அனுவாத ஏவம் தாத்பரிய கிருஷ்ண கிருபா ஸ்ரீமூர்த்தி அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜி துவாரா ஸ்ரீல பிரபுபாத கீ அப்னே பேட் சே பந்தி வோ கலி கோ பலபூர்வக அப்னே பீச்சே கசிட்டே ஹுவே பாலக் கிருஷ்ணனே தோனோ விரக்ஷ கோ உகாட் தியா பரம் புருஷ் கி யே மஹான் சக்தி சே தோனோ விரக்ஷ அப்னே தனோ பத்தோ ததா தஹனியோ தஹனியோ சமேத் புரி தரஹ சே ஹிலே ஔர் தட் தடாதே ஹுவே பூமி பர் கிர படே. தாத்பரிய கிருஷ்ண கி யே லீலா தாமோதர் லீலா கஹலாதி ஹை. இஸ்லியே கிருஷ்ண கா ஏக் நாம் அன்ய நாம் கிருஷ்ண கா ஏக் அன்ய நாம் தாமோதர் ஹை. ஹரிவம்ஸ் மே கஹா கயா ஹை சச தன் ஏவ நாம்னா தூ கிருஷ்ண வேதாம் பந்தநாத் கோஷ்டே தாமோதர இதி கோபி பி பரிகியதே. பஸ் இத்னை தாத்பர்ய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஜானஞ்சனா சலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் யேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோ ஆவிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மய்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயத பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ர ஜாதம் சகனா ரகுநாதாந்விதம் தாம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனா சைதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சகலா லலிதா ஸ்ரீ விசாகாந்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கோராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே பிரணமாமி ஹரி பிரியே பிரணமாமி ஹரி பிரியே. நமோ மாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கோரத்விஷே நமா. வாஞ்சா தஸ்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துமேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமா. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी जिनके परम अनुकंपा से आज उनके छत्र छाया में हमको उनके चरण कमलन में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम दयालु कृपा के सागर श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी श्री श्री गौर निकाय इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस युग के युगाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह को अति सरल करके देश विदेश में प्रचार किया है, जिनकी कृपा से जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, जिनकी कृपा से बच्चे भी बड़े आसानी से भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे महान संत श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण ये अमल पुराण है, वैष्णव संतों का ये परम धन है। परमहंस संहिता ये परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज उन आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान के युगल चरणों में स्मरण करते हुए उनके दिव्य कला कथा को गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण उस परीक्षित महाराज जी को श्रवण करा रहे हैं। इस दामोदर लीला का श्रवण कराते हुए बड़े गदगद हो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण के उदर में जब रस्सी बंधा गया था उस रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं, तो इसलिए इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं और इसी से भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। आज के श्लोक में वर्णन आता है कि कृष्ण बलपूर्वक खींचने लगे घसीटने लगे, बले न बल के साथ घसीटने लगे, निष्कर्ष या सयताम घसीट घसीट के लेके जब जा रहे हैं तो कृष्ण का यहीं पे और एक नाम पड़ा, वह है घसीटाराम। एक सेठ जी था बड़ा माल कमाने में व्यस्त, संत आया करता था कहते थे कि जप करो, बोला समय नहीं है दान लेना तो ले लो, तो बहुत ही उनसे निवेदन करने के बाद एक दिन कहा कल से, तो संत ने कहा शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, कल करे सो आज, आज करे सो, बोला नहीं कल तो ठीक है। तो संत ने देखा अगले दिन घसीटाराम का नाम जपा किया जा रहा है, घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम, तो संत ने कहा ये कोई ठीक नहीं है, राम कृष्ण गोविंद भगवान के अनेक नाम है, आप ऐसे नाम का उच्चारण कीजिए ये ठीक नहीं है। देखो महात्मा जी आपने कहा तो मैंने भगवान का नाम लिया, इसके अलावा और कोई नाम मुझे भाता नहीं है, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वो जप करना छोड़ दिया, तो रात को सपने में भगवान आए उस संत के और एक छाटा मारा तो उठ गया, सपने में उठ गया, मतलब क्या दंडवत प्रणाम किए 10 बार 20 बार 1000 बार, फिर पूछा बताइए आपने दर्शन दिया, मैं बड़ा आभारी हूं, मेरा जीवन कृतकृत हो गया, अब बताइए आपने झापड़ क्यों मारा। तो बोला मेरे भक्त को आप नाम लेने से मना कर दिया, तो भक्त है कि अभक्त है, प्रचार करने आया है कि लोगों को भगवान से दूर लेने आया है। तो बोला नहीं नहीं मैं तो आपका ही नाम का प्रचार करता हूं। तो उस सेठ जी को नाम लेने से मना कैसे किया, बोला अरे वो तो उल्टा सीधा नाम ले रहा था। तो और एक मारा था क्यों, तो बोला क्या नाम लिया, वो घसीटा राम बोल रहा था, घसीटा राम ये भी कोई नाम है। तो भगवान ने और एक मारा था नहीं ये भी मेरा नाम है। जिस दिन माँ यशोदा ने मुझे उकल से बांधा तो मैं घसीट घसीट के उस उकल को ले आता, तब से मेरा एक नाम पड़ा घसीटा राम। तो ये घसीटा राम घसीट घसीट के भगवान उकल लेके आ रहे हैं। पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण का ये जो लीला है, इस लीला में भगवान का जो प्रेम है भक्तों के प्रति, उस प्रेम का यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। लाखों वर्ष पहले लगभग त्रेता सतयुग के बीच की बात है कि नारद मुनि ने श्राप दिया था नंद कुबेर और मणिग्रह दो बालकों को, पर वो श्राप जो था नारद मुनि का, उसे स्मरण करते हुए, उस घटना को स्मरण करते हुए नारद मुनि का जो आशीर्वाद था दो बालकों को, वो स्मरण किया। द्वापर में जब भगवान स्वयं आएंगे और लीला करेंगे तब आपका उद्धार होगा, उस बात को सत्य करने के लिए। उस बात को किसने कहा है, अगर हम में से कोई कहा होता तो क्या भगवान करता, हो सकता है आप में से कोई कहे, पर मुझ जैसे या मैं कहूं तो शायद या कभी भगवान सुनते भी नहीं। पर नारद मुनि ने अगर कहा है तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय भक्त है, अगर वो कुछ कहेगा वो सत्य होगा, मेरे भक्त जो कहते हैं वह चार प्रकार के टूटियों से परे है, उसमें कोई गलती नहीं होगा, वो कभी ठगेगा नहीं या वो कभी ठग नहीं जाएगा, वो जो कहेगा वो सत्य होगा, वो जो कहता है वो सत्य है या सत्य हो जाएगा। अब उस बात को सत्य करना है, क्योंकि नारद मुनि कौन है, प्रिय भक्त है, भगवान के प्रिय भक्त है, और भगवान के प्रिय नारद मुनि कैसे बने। नारद मुनि सदैव भगवान का नाम लेते, सततम कीर्तयन्तो माम। भक्ति विनोद ठाकुर नारद मुनि का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर कहते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका नाम गाए, नारद मुनि बजाए। सतत नारद मुनि एक वीणा लेके जाते हैं और उस वीणा को बजा बजा के तीनों लोक में ही नहीं, वे भगवान के धाम में भी वीणा लेकर जाते हैं और राधिका रमन यानी कि भगवान का नाम का गान करते रहते, ऐसा प्रिय भक्त है। पर भगवान भगवत गीता में अपने श्रीमुख से अर्जुन को बताते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। कौन भक्त मुझे प्रिय है, तो कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है जो मेरा भक्ति का ज्ञान औरों को देते हैं। ये माम परमम कुयम मद्दाशते, मेरे भक्तों को जो वर्णन करते हैं गीता का ये ज्ञान, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है। नाचा तस्माद मनुष्यु, ऐसे मेरे ऐसे भक्त जो गीता का भक्ति का प्रचार करता है। नारद मुनि का प्रचार कैसा है, डाकू को वो संत बना देता है, मृगारी को एक महात्मा बना देता है, ध्रुव को बालक को महान संत बना देता है। उनके शिष्य कहां नहीं है ये बताओ। नरक में भी जाते हैं, वहां पे भी भक्ति का प्रचार, भक्ति का आचार्य है। ऐसे भक्त जो इस लोक में प्रचार करता है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वो मुझे अति प्रिय है। नाचा तस्मात मनुष्यु कश्य में प्रिय तमा भविता न चान्यात, उससे बढ़कर कोई नहीं है, ये मुझे प्रिय है। ऐसे नारद मुनि के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। माम एव शर, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ऐसे भक्त है नारद मुनि, द्वादश महाजनों में एक महाजन नारद मुनि है। नारद मुनि कैसे हैं? उनका नाम से ही पता लगता है, जो ना नारा का तो है, नारायण को दूसरे को दे सकता है या दूसरों को देने में जो पटु है वो नारद है। नारायण को दूसरे को देने वाला को नारद कहते हैं, या ऐसे भी कहा जाता है जिसके शब्दों को वाणी को जो रद्द नहीं किया सकता है। भगवान नारद ने कहा कि द्वापर में आप दोनों का उद्धार होगा, तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो वृक्ष के जैसे। तो नारद उनके वाणी को रद्द नहीं किया जा सकता है, जो सत्य होगा सत्य होगा और जरूर सत्य होगा। ऐसा नहीं हुआ कि नारद ने कुछ कहा और वो नहीं हुआ, वो लिखा है उसे रद्द नहीं किया, वो रद्द नहीं हुआ, वो सत्य हो गया। हाँ नारद जी ने कहा है और आज द्वापर में भगवान उसे याद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें प्रिय है। प्रिय भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान और कहते हैं 12वें अध्याय में कहते हैं, अद्वैष्ट सर्व भूताना मैत्र कर्ण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समय। नारद मुनि कैसा है, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। वो कंस के पास भी जाते हैं उनके हित के लिए, देवताओं के पास भी जाते हैं उनको समझाने के लिए कि कृष्ण का भक्ति कर, कहीं पे भी जाता है द्वेष नहीं करते किसी से। निर्मम उनका कुछ नहीं है, निरहंकार सम दुख सुख समय, दुख में हो या सुख में हो सदैव सम तरह से भगवान का भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सतत भगवान का कीर्तन करते हैं। यह है नारद मुनि। ऐसे मेरे भक्त ने कुछ कहा है और वो मैं सत्य नहीं करूं, हो नहीं सकता है। भले ये दो जीव जो है ये तो नलायक है, पर नारद ने उनको उद्धार होने का वादा कराया है। नारद मुनि संत है। आप सब सुनते आए होंगे कि कैलाश में वो एक दिन भ्रमण कर रहे थे, और कैलाश में भ्रमण किस लिए कर रहे थे, क्योंकि शिवजी का वहां पे भागवत था। शिवजी कैलाश में भागवत कर रहे थे और शिवजी का कथा मेरे बड़े भैया कथा कर रहे हैं, वो भी महात्मा है, और उनका क्या कहना, शिवजी का क्या कहना, पंचमुख से हमेशा सदैव भगवान का नाम लेते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। वो महादेव कथा कर रहे हैं तो वो भ्रमण करने गए थे इस कथा को सुनने के लिए। कुबेर जी भी आए अपने परिवार सहित, और परिवार के सदस्य में नल कुबेर और मणिग्रह था, तो कुबेर जी तो सामने बैठ गए, बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं एक चित होकर, पर नल कुबेर मणिग्रह वो बालक थे और अबोध थे, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त थे, पूरी तरह से रचपते पछे थे। वो धीरे धीरे से
कतार में से खिसकने लगे, पीछे बैठने लगे और पीछे बैठते बैठते गायब हो गए। तो इस प्रकार से गायब हो गए और दो तीन मोबाइल लगाया और अपने फ्रेंड्स को बुलाए, बोला बहुत ही रमणीय स्थान है आ जाओ। तो वो लोग आए वहां पे सोमरस पी के पिकनिक करने लगे। नारद मुनि तेज गति से आ रहे थे कि कथा प्रारंभ ही होना है, तब देखा ये क्या, ये तो कुबेर जी हैं, कुबेर जी के वंशज में है, उनके आत्मज है। कुबेर जी तो भागवत श्रवण करने के लिए तत्पर है और ये भोग ऐश्वर्य। तब नारद मुनि को भगवत गीता का वो वचन याद आ गया, भगवान ने कहा है भोग ऐश्वर्य प्रसत्ता नाम त्या परत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समतो न विद्यते। वो व्यक्ति जिसका चित्त जो है भोग में, शराब पीने में, ऐसे लड़कियों के साथ नाचने गाने में लग गया है, अरबों करबों जन्म में के बाद भी उसका चित्त जो है व्यवसाय आत्मिका, यानी कि व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ होता है धंधा। मनुष्यों का क्या धंधा है, क्षत्रिय का कर्तव्य, व्यवसाय का तो धंधा हम बोलते हैं ना धंधा करने, पर हम सब जीव का एक ही धंधा है, एक ही व्यवसाय है, वो है आत्मा का उन्नति करना। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक है कुरी नंदना, यही व्यवसाय हम सबका है। क्या हम भगवान का, आत्मा का उन्नति करे और आत्मा का उन्नति करने के लिए भगवान का भक्ति करे। तो देखा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये भोग और ऐश्वर्य में लखपत हो गए, अरबों खरबों अनेक जन्म होगा, इस जन्म तो उनका मनुष्य का है और ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, और ये जन्म मिला है सत्संग का लाभ लेकर इस भव सागर को पार करने के लिए, पर ये दोनों बालक अबोध है और ये कब उनका उद्धार होगा मैं नहीं जानता हूं। ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हुए एक सुंदर कथा सुनाते हैं, पुनर्मुसी का भवन। एक चूहा का वर्णन करते हैं, एक चूहा डर डर के एक संत के पास आते हैं, संत के पास सभी जाते हैं, तो चूहा ने देखा मैं भी जाऊंगा। तो बोला, संत ने बोला क्या चाहिए, तो बोला मेरे पीछे एक बिल्ली है और बहुत मुझे डरा रहा है, तो क्या चाहिए, बोला मुझे बिल्ली बनाओ तो आगे से उसका डर नहीं रहेगा। तो संत का इतना शक्ति था, उन्होंने तथा अस्तु कहा, तो वो चूहे से वहीं पे बिल्ली बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद घूमते फिरते वो बिल्ली आया वहां पे। अब बिल्ली ने कहा संत महात्मा मुझे थोड़ा सा कृपा करो, तो बोला क्या, अब क्या, तो बोला बहुत डर लग रहा है, कुत्ता पीछे क्या, अब क्या चाहिए, मुझे कुत्ता बना दो। तो तथा अस्तु, तो वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के घुमा फिरा, फिर से आया, संत महात्मा से कहा कृपा करो, तो बोला क्या चाहिए, अब अभी सियार पड़ गया मेरे पीछे, तो क्या चाहिए, तो सियार बनाओ। तो तुरंत तथा अस्तु सियार बन गया। अब फिर से एक दिन आया, तो बोला अब क्या चाहिए, तो बोला एक शेर मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, शेर बना दो मुझे। तो तथा अस्तु कह रहे, और जब वो शेर बन गया तो बहुत भूख लग गया उसको। अब देखा खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो जोर जोर से गरजने लगा और वो संत देखने लगा, अरे मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है और जोर जोर से गरज रहा है, इसका नियत लगता है बदल गया है, शेर बनाया मैंने इसे और मुझे ही खाने का प्रयास कर रहा है। और धीरे से वो महाप्रसादी बोलने लग गया। तो संत ने सोचा इसको अभी मैं सबक सिखाता हूं, ये शेर का शरीर मिला है उसको मैंने दिया है और कुछ और काम के लिए, वो मुझे ही खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो वो कमंडल से जल लिए और फेंके और कहा पुनर्मुसिका भवा, शेर से वो फिर से चूहा बन गया। तो प्रभुपाद जी इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हम पहले कीट थे, फिर बाद में कभी जाके वृक्ष बने तो वृक्ष के बाद पक्षी बने, पक्षी के बाद हम अलग अलग प्रकार योनियों में होते हुए आज हम मनुष्य बने। मनुष्य बनाया किसने? भगवान ने। और जब भगवान जैसे हमारा रूप हो गया, दो पांव दो हाथ, तो हम सोचे हम भी एक दिन भगवान बनेंगे। भगवान का भक्त बनने का या उनका सेवा करने का कोई इच्छा नहीं, तब भगवान सोचे अरे मैंने आपको मनुष्य बनाया मेरा भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। अगर भजन नहीं करोगे तो पुनर्मुषिका भव। तो इस प्रकार से नारद मुनि सोचा ये फिर से कीट पतंग बन जाएंगे, कब उनका उद्धार होगा ये मैं नहीं जानता हूं, पर श्रापित कर दिए अगर इस प्रकार से आपको नग्न अवस्था में रहना है तो वृक्ष बन जाओ। और गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। तब कहा कि ठीक है, द्वापर में हाँ महाराज जी बताते हैं वृक्ष बना तो भी कहां बना, मीरा रोड में नहीं, अमेरिका में नहीं या स्विट्जरलैंड में नहीं, बना तो कहां बना, नंद महाराज के आंगन में, वृंदावन में। और वृंदावन में जाके दोनों वृक्ष बन के खड़े रहे और अरबों लाखों वर्ष तक रुके रहे। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए और देखा यही दो वृक्ष है और उनको उनका उद्धार करने के लिए अब धीरे धीरे से भगवान। ये जो लीला है इसमें यही है कि नारद मुनि ने कहा और नारद मुनि भगवान के प्रिय भक्त हैं और भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के बातों को सत्य करने के लिए वो धीरे धीरे से आ रहे हैं और घसीट के ऐसे घसीट लिया कि स्कंद प्रबल। स्कंद जो है अर्थात उसके अलग अलग वृक्ष के जो ब्रांचेस है वो गिरे और बहुत सारे पत्ते गिरे और धड़ाम करके आवाज आया। यहां तक सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान धीरे धीरे से घसीट घसीट के ये लेके आ रहे हैं। केवल और केवल नारद मुनि का एक बात को सुनकर भगवान ने इस लीला को फिर गहराई से समझने का प्रयास करें। अगर नारद मुनि का कृपा ये दो बालकों के ऊपर नहीं होता तो क्या होता? क्या वो भगवान वृंदावन में भगवान का लीला का दर्शन कर पाते? कभी नहीं, वो खुद लीला में लीला करने के चक्कर में घूमते रहते। आज अगर ये दो बालक भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आज अगर बालक का उद्धार भगवान कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक संत का, इनका चेतना इतना निकृष्ट है, भोग में लगा हुआ है, ऐश्वर्य में लगा है, वो कभी वापस मनुष्य जीवन प्राप्त करे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज ये मनुष्य नहीं, आज वो भगवान का दर्शन करके वापस भगवत धाम जा रहे हैं। क्यों? एक संत का कृपा मिला। ये संत का कृपा जो है इसके बारे में एक महात्मा कहने लगे, वो कहते हैं कि ये ऐसा ये कृपा जो है भगवान का वो ऐसा चीज है जो चेतना को निकृष्ट से उत्कृष्ट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना लिफ्ट, ये लिफ्ट देख के जैसे आकाश को चूमने वाले इमारत जो है गगनचुंबी इमारत बोलते हैं ना स्काई स्क्रेपर, 100 माले का या 150 माले का, तो उसमें आपको जाना है 150वां माले में। हाँ, तो दो तरीका है, एक तो चल चल के हम थक जाएंगे, पर दूसरा तरीका लिफ्ट में बैठो और बड़े आसानी से ऊपर चले जाओ। इसी प्रकार से इस चेतना को उन्नत करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये चेतना को उन्नत करना इतना कोई आसान काम नहीं है। जिस वक्त तीसरे स्कंद में एक लीला आती है, यमराज जी के पास एक संत गए, यमराज जी ने उसको जबरदस्त नरक में बुलाया तो संत ने पूछा मेरा कसूर क्या है। तो गुप्त चित्रगुप्त ने इनका फाइल उठाया, बोले तो इसका तो कोई है नहीं। बोला हाँ, बचपन में इसने एक चींटी के आंख में सुई को घुसाड़ा था, तब वो ऋषि ने श्राप दे दिया यमराज जी को और यमराज जी विदुर बन गए। वो कहा कि यमराज जी थोड़ा सोचिए समझिए, बालक अबोध होता है और बालपन में कुछ गलती किया, उस गलती को इतना बड़ा नहीं लिया जाता है। अगर सजा ही देना है ना, ये पहले जरा तो देख कि पृथ्वी लोक में कितना पाप है, कितना भोग है, कितना ऐश्वर्य है, कितना रजस और तमस है। ऐसे है रजस तमस वाले वातावरण में कोई भगवान का भक्ति कर रहा है, उसको आप नरक लेके आए। पहला पृथ्वी में जा और देख कि भगवान का भक्ति करना कितना कठिन है। जो भक्त भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, बार बार उनका यही प्रश्न होता है, हमारा मन जप करते वक्त यहां वहां क्यों भ्रमण होता है। हम हरे कृष्ण करते हैं तो पूरा मन इधर उधर सब जगह जाता है, मन एक चित्त क्यों नहीं होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आप सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप सब महात्मा है, संत है, बड़े उन्नत है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मन इधर उधर क्यों होता है? क्योंकि रजस तमस इतना है कि जब परीक्षित महाराज ने कली को छोड़ दिया, ठीक है कलेर दोष निधि राजन अस्ति, एक महान गुण, एक महान गुण को देखकर छोड़ दिया कि जा, क्योंकि इस कलयुग में हरिनाम करने से सबका उद्धार हो जाएगा। तब कली जाते जाते थोड़े देर के बाद वो मिट्टी में लोटपोट हो रहा था, क्षमा मांग रहा था, मिट्टी को झड़क झड़क के फिर बाद में कली छाती पे हाथ डाल के हंसने लगा जोर जोर से। परीक्षित महाराज गुड़गुड़ के देखा और देखा इसका भाव क्या है, और हंस हंस के कहा, हे परीक्षित महाराज जी, आप यही सोचते हो कि कलयुग में मनुष्य आएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और त्रेता द्वापर और सतयुग में जो लाभ करोड़ों अरबों वर्ष ध्यान इत्यादि करने से मिलता है वो 2, 3 या 20 साल में प्राप्त करके भगवत धाम जाएंगे? और जोर से हंसने लगा। वो तो तब होगा ना जब मैं उन्हें हरिनाम करने दूंगा। अरे इतना मैं पाप, इतना भ्रष्टाचार, इतना मैं यौन अवैध शराब नशा में सबको लिप्त कर दूंगा, खबरदार कौन भगवान का नाम ले। फिर भी परीक्षित उसे छोड़ दिया, क्योंकि परीक्षित महाराज जी संत है, महात्मा राज ऋषि हैं, वो जानते हैं भविष्य में एक महान संत आएंगे, सेनापति भक्त आएंगे भगवान के, जिनका कृपा से एक कुत्ता भी एक बच्चा भी भगवान का नाम लेगा। ऐसे रजस तमस में लिप्त हिप्पियों को भी वो हैप्पी कर देंगे। इसलिए परीक्षित महाराज ने फिर से उस कली को पकड़ा लिया और छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी जैसे संत के आंदोलन में आए भक्त भी उतने ही सक्षम है, वो जिन्हें भक्त बनाते हैं वो भी ऐसे महाकली के रजस तमस वातावरण में भी अगर कोई भगवान का नाम लेने का प्रयास करता है, वे भी धीरे धीरे कली के इस प्रभाव से मुक्त होकर भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पर कलयुग जो है, मैं कह रहा था इस पृथ्वी में इतना पाप और भ्रष्टाचार है, भगवान में मन लगाना बहुत मुश्किल है। तो नारद मुनि सोच रहे थे ये 2 बालक जो है कब इसका चेतना उन्नत होगा, ये तो सतयुग में इनका मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो द्वापर और कली में तो लगेगा ही नहीं। और नारद जैसे महाभागवत का जब आशीर्वाद मिला, ऐसे निकृष्ट चेतना से आज उनका चेतना इतना उत्कृष्ट हो गया कि आज वह भगवत धाम जाने के लायक बन गए। यह है संतों का आशीर्वाद। भगवान का कृपा है, पर भगवान का कृपा भक्तों के आशीर्वाद से या कृपा से हमें मिलेगा। और इस कृपा को बनाए रखने के लिए हमारे पास वो पात्रता होना चाहिए, वो चेतना होना चाहिए। वो चेतना अगर नहीं होगा, ऊंचे चेतना नहीं होगा, भगवान का जो कृपा है वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक संत कह रहा था कि भगवान का कृपा जो है उसे पकड़ने के लिए मन जो है सक्षम होना चाहिए, उस प्रकार का चेतना होना चाहिए, नहीं तो कृपा बह जाएगी। तो वो तुलना कर रहा था कि भगवान का कृपा प्राप्त करना कितना कठिन है। तो कहते हैं कि शेरनी का दूध जो होता है उसमें इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, कोई साधारण पात्र रखे तो पात्र में छेद हो जाएगा। शेरनी का दूध का वर्णन करते हैं, शेरनी का दूध ऐसा पात्र में, स्वर्ण पात्र में ही उसे हम भर सकते हैं, स्वर्ण के पात्र में शेरनी का दूध। पर वो कहने लगे आगे जाके, पर बात यह है, पहली बात तो स्वर्ण का पात्र कहां मिलेगा शेरनी का दूध को पकड़ने के लिए? स्वर्ण पात्र ठीक है, स्वर्ण पात्र मिल भी गया है तो शेरनी का दूध कहां से मिलेगा? पहले तो जंगल कहां मिलेगा? जंगल मिल भी गया तो शेरनी है, उसके सामने कौन जाएगा? ठीक है, शेरनी भी मिल गई तो बच्चा दिया हुआ मां बन गई, ऐसे शेरनी कहां मिलेगी? ठीक है, बच्चा दिया एक शेरनी ने, वो मां बन गई है, अब उसके पास कौन जाएगा? ठीक है, उसके पास भी गए, उसके स्तनों से दूध लेने की हिम्मत कौन करेगा? यानी कि कितना कठिन है। फिर आगे जाते कहते हैं, पर शेरनी का दूध अगर लेना है, एक सरल तरीका यह है। वो तरीका क्या है? शेरनी का बच्चा बन जाओ। शेरनी का अगर बच्चा हो जाए तो ऐसे लोटपोट होते हैं, थोड़ा सा वो शेरनी का बच्चा आवाज करे तो मां स्वयं आकर उसे स्तन लगाकर अपना दूध पिला देगी। और वो शेरनी का बच्चा जो है बड़े प्यार से उस दूध को पीकर वो भी हट्टे कट्टे और तगड़ा हो जाए। तो वही शेरनी का दूध जो है, अगर हम शेरनी का बच्चा नहीं बनेंगे तो कितना कठिन होगा। शेरनी का ढूंढना, फिर पकड़ना, फिर पात्र लेके आना, बहुत मुश्किल, नहीं के बराबर। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान का कृपा है, पर वो कृपा जो है केवल और केवल वैष्णवों का अनुगत होकर या वैष्णवों के सेवा कर या वैष्णवों का आशीर्वाद मिले तो वो हमें वो कृपा मिलेगा। अगर ऐसे वैष्णवों का आशीर्वाद या कृपा नहीं मिलेगा तो भगवान में हमारा मन कभी नहीं लगेगा। तो आज ये जो नल कुबेर और मणिग्रह है, जो एक समय सतयुग में इतना दुष्ट कार्य कर रहे थे, उनका मन भगवान में लग चुका है और भगवत धाम जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि नारद मुनि का कृपा उन्हें मिल गया। नारद मुनि ने कहा कि द्वापर में आपका उद्धार होगा। अगर नारद मुनि ने यह नहीं कहा होता तो नल कुबेर आज भी द्वापर चला गया, चैतन्य महाप्रभु आकर अपने लीला करके गए, फिर भी वो लोग पता नहीं कौन सा कीड़ा या कौन से वृक्ष या बना हुआ रहता, पर वो द्वापर में वापस चले गए। भक्त का कृपा हुआ है उनके ऊपर। इसी प्रकार से हम सबको भी वैष्णव का कृपा लेने के लिए अपने आप को सक्षम करना चाहिए। तो वैष्णव में अनेक वैष्णव है, पर हमारे लिए हमारे बीच प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव है, उनके अनुयायी है, तो उनका कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना है उसे कर लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप 16 माला ध्यान पूर्वक करो, 4 नियम कड़ाई से पालन करो और मेरा कृपा प्राप्त करो। अगर हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जब करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई ना कोई प्रभुपाद जी के अनुयायी या कोई ना कोई प्रभुपाद जी के भक्त आकर कहेगा ये भक्त बहुत ही सीरियस है, उनका कृपा दृष्टि पड़ जाएगा। और जैसे ही उनका कृपा दृष्टि पड़ जाएगा प्रभुपाद जी को रिपोर्ट चला जाएगा और प्रभुपाद जी का कृपा उस भक्त पे हो जाएगा, वो भले कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो, कितने भी गंदे दुष्ट कार्य किया क्यों ना हो, चेतना कितना भी उसका रजस तमस में पड़ा हो, अगर प्रभुपाद जी जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए 10 साल 20 साल में वो महात्मा बनकर देह त्यागने के समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए भगवत धाम जाएगा। ये तब संभव होगा जब वैष्णव का कृपा उन्हें मिलता है। नल कुबेर मणिग्रह को वैष्णव का कृपा प्राप्त हुआ, उनका चेतना उन्नत हो गया, उनका जीवन सार्थक हो गया। हम अब प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी का कृपा हमें हमारे ऊपर हो जाए, इस प्रयास के लिए हमें जो कुछ भी लगे वो कर लेना चाहिए, तब हमारा चेतना लिफ्ट के भांति तुरंत निकृष्ट से उत्कृष्ट हो जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समय हो चुका है, आप सब ने बड़े ध्यान से श्रवण किया, बड़े आभारी हैं, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। गौर हरि प्रेमानंदे।